हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वहीं उसके दादाजी को उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगा, लेकिन उन्हें पता है कि वो शैतानी प्रवृत्ति का है और किसी से भी प्यार या नरमी से बात करना उसके स्वभाव में ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो दादा से बहुत ही ठीक तरह से बात करता है। आज शायद वो नाराज है या फिर निराश। विक्रांत के दादाजी नरेंद्र ठाकुर ने बहुत ही मजबूती से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ पता है मुझे, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है और हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम मेरे पोते हो और मैं इस बार उसे शैतान को जीतने नहीं दूंगा। इस बार मैं उसे हरा कर रहूंगा और इस श्राप से भी तुम्हें आजाद करवाऊंगा। कोई श्राप नहीं, मेरी जिंदगी है ये और मैंने इसे इस तरह से स्वीकार कर लिया है। आप भी इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? विक्रांत ने बहुत ही ज्यादा नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। तो उसकी इस बात पर दादाजी ने एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी और फिर नजर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, शांत हो जाओ विक्रांत और शांति से मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो ये तुम असल में नहीं हो, अभी तुम उसी शैतान के कब्जे में हो जिसे बहुत सालों पहले मैंने कैद कर किया था, और तुम्हारे जन्म से ही वो आजाद हो गया है और इसी का बदला वो मुझसे ले रहा है। विक्रांत के दादाजी ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की और वहां से आगे बढ़े, लेकिन विक्रांत ने अपना हाथ आगे किया और उसके हाथ से एक काली रोशनी निकली जिसने पूरी तरह से दादाजी को अपनी शक्तियों में बांध लिया और वो अपनी जगह से हिलडुल नहीं पाए और वहीं पर रुक गए। विक्रांत की आंखें अब आग की तरह जल रही हैं और दूर से एकदम चमकती हुई पीले नारंगी रंग की दिख रही हैं। वो काफी गुस्से में लग रहा है, शायद दादाजी की ऐसी बातें सुनकर ही उसे गुस्सा आ गया है। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा दादा हूँ और तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मुझे पता है विक्रांत, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ और जो कुछ भी करूँगा सब तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। दादाजी के दोनों हाथ बंधे हुए एकदम नीचे हैं जिसकी वजह से वो अपनी शक्तियों का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो विक्रांत से बात करके उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विक्रांत उनकी कोई भी बात सुनने या समझने के मूड में नहीं लग रहा। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि चले जाइए यहाँ से, लेकिन फिर आपने ही मुझे गुस्सा दिलाया है, तो अब आपको गुस्से का असर झेलना पड़ेगा क्योंकि अब आप मेरे रास्ते में आ रहे हैं। मैं सबसे ताकतवर शैतान बन सकता हूँ, उसके लिए 14 दिन बाद मुझे बस राजकुमारी की शक्तियाँ चाहिए और उसके बाद फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। इतना बोलते हुए वो अजीब तरह से शैतानी हंसी हंसा जिसे सुनकर दादाजी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ राजकुमारी, तुम राजकुमारी को यहाँ पर लेकर क्यों लाए हो? छोड़ दो उसे। विक्रांत के दादाजी नरेंद्र ठाकुर असल में राजकुमारी के बारे में पता करने के लिए ही यहाँ पर आए थे, लेकिन विक्रांत को नाराज और गुस्से में देखकर वो इस बारे में भूल गए थे। लेकिन अभी जैसे ही विक्रांत ने खुद राजकुमारी का जिक्र किया, विक्रांत के दादाजी को भी राजकुमारी के बारे में याद आया और उन्होंने ये बात कही जिसे सुनकर विक्रांत जोर जोर से हंसने लगा और उसी तरह हंसते हुए बोला, हा हा हा, भूल जाओ राजकुमारी को, मैं कभी भी यहां से जाने दूंगा, उसकी सारी शक्तियां मेरी होकर रहेगी और उसके बाद मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, पूरी दुनिया पर, कोई भी रोक नहीं पाएगा मुझे मेरा काला साम्राज्य बसाने से, और मैं बनूंगा उस साम्राज्य का बेताज गादशाह। नहीं, मेरे रहते तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, और क्या हासिल होगा तुम्हें ये सब करके, और तुम्हें वो शक्तियां भी नहीं मिलेगी विक्रांत, भूल जाओ वो सब और राजकुमारी को जाने तो यहां से। विक्रांत के दादाजी ने बहुत ही मजबूती से ये बात कही तो विक्रांत ने गुस्से से घूर कर उनकी तरफ देखा और विक्रांत की आंखों से निकलती हुई वो रोशनी उनके शरीर तक पहुंच रही है लेकिन उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पा रही। विक्रांत को इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आपका ही खून हूं मैं, तो आपको जान से तो नहीं मार सकता, बस इसीलिए आप हर बार 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 बच जाते हैं। नहीं, ये भी इस श्राप का एक हिस्सा है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, जो तुम्हें भी नहीं पता है और मुझे भी, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं, और मुझे मारने की कोशिश करने से अच्छा होगा कि तुम खुद इससे बाहर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि ये श्राप अंदर अंदर तुम्हें मार रहा है। विक्रांत के दादाजी ने इतना कहा और फिर उन्होंने एकदम से पूरा जोर लगाया तो उनके आसपास बंधी हुई उन काली शक्तियों की अदृश्य डोर जैसे एकदम ही टूट गई और वो उसमें से आजाद हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त विक्रांत सोच में पड़ गया था
और उसका ध्यान इन सब चीजों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उसे इस तरह से सोचते हुए देखकर दादाजी को लगा कि शायद विक्रांत उनकी बातों में आ गया है। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही, कम से कम वो इस बारे में सोच रहा है, तो वो उसे अपनी तरफ कर सकते हैं। ये सोचते हुए वो आगे आए और बहुत ही प्यार और नरमी से उन्होंने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ है राजकुमारी, जाने दो उसे, और जो शक्तियां तुम्हें मिलनी होगी वो तुम्हें वैसे भी मिल जाएंगी। इस तरह से राजकुमारी को कैद करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। दादाजी की ये बात सुनकर विक्रांत ने एक झटके से अपनी गर्दन घुमाते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, मेरी शक्तियां 100 गुना बढ़ जाएगी उसकी शक्तियों के साथ मिलते ही, और उसके बाद 14 दिन बाद जो होने वाला है वो भी टल जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा हमेशा के लिए। और क्या, आप नहीं चाहते कि आपका पोता कभी ना मरे? विक्रांत ने दादाजी की तरफ तिरछी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए ये बात कही तो दादाजी भी आगे कुछ और नहीं बोल पाए। वो भी उसकी ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गए और उन्हें इतना समझ आ गया कि वो राजकुमारी को नहीं छोड़ने वाला और ना ही उसने उन्हें बताया कि उसने राजकुमारी को कहां पर कैद करके रखा। विक्रांत के दादाजी को समझ आ गया कि जो कुछ भी करना है तो उन्हें खुद ही करना होगा और खुद से ही राजकुमारी का पता भी लगाना होगा। दूसरी तरफ सुबह का वक्त, सूरज बस निकलने वाला है और आसमान में अंधेरा बिल्कुल गायब हो चुका है और हल्की हल्की रोशनी पूरे आसमान पर छाने लगी है। इस बीच जंगल में 3 लोग एक साथ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। वो तीनों ही काफी देर से चल रहे हैं जिससे कि वो काफी ज्यादा थक गए हैं, खासकर उन तीनों के बीच में चलती हुई लड़की चंद्रिका। वो अपने घुटने पर हाथ रखकर तेज सांसें लेते हुए बोली, अभी और कितना दूर चलना है हमें, हम अब नहीं चल सकते। और इतना बोलते हुए चंद्रिका वहां पास में पड़े हुए एक पत्थर पर ही बैठ गई। उसे इस तरह से बैठते हुए देख उसके साथ चल रहा राजकुमार समर भी दूसरे पत्थर पर बैठ गया और उसने भी चंद्रिका की बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ मैं भी नहीं चल सकता, अगर मुझे पता होता हमें इतना चलना है तो मैं घोड़े साथ लेकर आता, कम से कम पैरों में दर्द तो नहीं होता। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर वीरेश, जो कि उन तीनों में सबसे आगे चल रहा था, उसे भी वहां पर ही रुकना पड़ा। उसके चेहरे पर थकान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसे आदत है, वो हमेशा हर जगह इस तरह से पैदल चलकर ही आता और जाता है। साथ ही उसकी शक्तियों की वजह से भी उसे थकान नहीं होती, वो ध्यान करता है और अपनी इंद्रियों पर उसका काबू रहता है। कहानी जारी रहेगी।